नमो हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण। तो भक्ति शास्त्री के सूरत के भक्तों का स्वागत है चौथे दिन के आज भगवद गीता के सत्संग में। सत्रों अध्याय भगवद गीता का त्रिविभाग श्रद्धा त्रिविभाग योग सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा ये विषय है जो चल रहा है। चौदह अध्याय में हमने तीन गुणों का वर्णन पढ़ा, प्रकृति के तीन गुण चौदह अध्याय था। हाँ, प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन चौदह, उसमें तीन गुणों के अंतर्गत क्या होता है वो हमने पढ़ा। सत्वगुण में ज्ञान होता है, रजोगुण में लोभ होता है, सत्वगुण का देवलोक में जाता है, रजोगुण का पृथ्वी लोक में आता है। फिर सत्रहवें अध्याय में हम कम से पहले भोजन तीन गुणों के अंतर्गत भोजन, तीन गुणों की पूजा, तीन गुणों का यज्ञ, तीन गुणों का तप, तीन गुणों का दान, तीन गुणों के अंतर्गत ये पढ़ेंगे। 18वें अध्याय में फिर तीन गुणों के अंतर्गत कर्ता तीन गुणों का कैसा होता है, कर्म तीन गुणों का कैसा होता है, ऐसे पांच सात और विषय तीन गुणों के अंतर्गत 18वें अध्याय में है। इसलिए कोर्स पूरा होए उस तक या उससे पहले अपनी अभ्यास के लिए ऐसा एक चार्ट बना दीजिए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यहाँ विषय लिखिए दान सतोगुण का रजोगुण का तमोगुण का, तप सतोगुण का रजोगुण का तमोगुण का। तो ऐसा एक अभ्यास कर लीजिए इन सब को लेकर, 14वें अध्याय को देखकर, 17वें अध्याय को और 18वें अध्याय को। 18वें अध्याय में 40 के करीब 40 तक है, 20 और 40 के बीच में कुछ श्लोक है जिसके अंदर पांच सात विषय हैं तीन गुणों के अंतर्गत। और बहुत अधिक अपने आप को, क्योंकि भक्त जो होते हैं तीनों गुणों से ऊपर उनका कार्य होता है, भक्तों का कार्य तीनों गुणों से ऊपर होता है। प्रभुपाद ने कहा कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए, कृष्ण का भावना संस्था का उद्देश्य है कम से कम लोगों को सत्वगुण में लाना, लेकिन सत्वगुण के बाद उनको सत्वगुण का भी सत्वगुण से ऊपर उठना है, शुद्ध सत्वगुण में जाना है जहां भगवान को समझना केवल संभव है। तो शुद्ध सत्वगुण में जाना है तो शुद्ध सत्वगुण के भी गुण लक्षण है वो भगवत गीता में नहीं मिलेंगे, वो भागवत में मिलेंगे। तो कोई थोड़ा सा अभ्यास करे और समय हो किसी के पास तो 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत से उद्धव को जहाँ भगवान शिक्षा दे रहे हैं वहाँ तीन गुणों के साथ चौथा निर्गुण भी है जो भक्तों का लक्षण है असल में। तो ये आप कैसे इसको बांट सकते हैं कि सिर्फ एक तीन चार ग्रुप बना लें, एक ग्रुप ग्रुप मतलब चार चार आदमियों का ग्रुप बना लीजिए, एक ग्रुप सिर्फ सतोगुण का ढूंढेगा, एक रजोगुण का ढूंढेगा, एक तमोगुण का और एक निर्गुण का। तो क्या एक कहेगा भाई तुम 13वें तुम 14वें अध्याय से ढूंढ के आना, तुम 15वें तुम 16वें से ढूंढना, बल तुम 17वें तुम 18वें से निकाल के आना, तुम भागवत से देख लेना। तो चार चार आदमी का ग्रुप आप बना लीजिए और वो फिर एक ग्रुप अपना सब कंपाइल करके आए, दूसरा कंपाइल करे, तीसरा और चौथा कंपाइल कर ले, फिर एक दिन साथ बैठ के सब आपस में शेयर कर लीजिए तो सबके लिए काम आसान होगा। हर एक आदमी सब नहीं निकाल सके, उतना एक से काम नहीं होगा। और थोड़ा सा कोई और सर्च करोगे तो कहीं बना बनाया मिल जाएगा, कुछ लोगों ने पहले काम किया है तो ऐसे वो छपे हुए भी मिल जाएंगे कहीं, लेकिन छपे हुए में आपको क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन आप स्वयं जाके उसको ढूंढोगे तो वो आपको ज्यादा उसमें अच्छा लगेगा। तो अभी तो समय नहीं है, वैसे हर एक ग्रुप अपने अपने गुण के अनुसार वो करके दिखाता छोटा सा ड्रामा कि भाई तमोगुण का जो है ये तमोगुण का दान कैसा है, तप कैसा है, तो वो आपको कभी नहीं भूलता इसका। अभी हमने अगली बार तक ये आप होमवर्क समझ लीजिए इसको निकाल, क्योंकि प्राय भगवद गीता में ये तीन गुणों का वर्णन अधिक है, कुछ पूरा अध्याय इसके ऊपर है, और फिर हमको इन तीनों गुणों से अलग जो निर्गुण है उसके गुण कैसे हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो आप ग्रुप कैसे बनाएंगे, क्लास के बाद एक ग्रुप बना लीजिए, दो ग्रुप आप लोग बना लीजिए, माता जी लोग दो ग्रुप बना लीजिए, उसमें आप निकाल लीजिए प्रायः दो चीज़ें, और दो आप दो ग्रुप बना लीजिए और आपस में बांट लीजिए कि इस अध्याय में आप रुकना है, तो वो आसान हो जाएगा थोड़े टाइम में, और फिर हम हफ्ते में एक दिन आपस में मिलके उसको, ठीक है, ये एक अभ्यास इन तीन गुणों के अंतर्गत कर लीजिए, और फिर वो आपके पास रेडी पड़ा होगा बना हुआ। और दूसरे टाइम जब आए तो पहले दिन हर एक अपने ग्रुप अपना उसका छोटा सा चाहे चार्ट बनाए दिखाए, चाहे उसके ऊपर छोटा सा ड्रामा किया जा सकता है कि सत्वगुण का दाम कैसे, दान कैसे कहाँ देना जाता है, आदमी एक आदमी दान लेने वाला हो एक देने वाला हो, रजोगुण के दान का दिखाओ वो क्या करता है, रजो तमोगुण वाले दान वाला पैसा लेके आपका कहाँ जाता है। तो ये सब आप इसका थोड़ा सा और ऐसा बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली अच्छा लगेगा, भगवद गीता ऐसे इंटरेक्टिव लगेगी। तो समय कम है, वरना ये तो अगली बार के लिए, अभी दिसंबर में नेक्स्ट टाइम प्रशांता माता जी जैसे बात हुई है, दिसंबर के 25 से लेकर 28 29 तक या 30 तक 18वां अध्याय पूरा करेंगे, तो एक महीना मोर और लेस एक महीने से ऊपर हमारे पास अभी समय है। तो इस महीने में आप ये गुणों वाला अभ्यास कर लीजिए, छोटा से ड्रामा बना लीजिए अपने अपने एक एक गुण का और ग्रुप बना लीजिए, तो एक ये अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो कल हमने श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होती है, श्रद्धा का उद्गम स्थान क्या है, सतोगुण, श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है, श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर जिस गुण का प्रभाव ज्यादा रहता है वैसा श्रद्धा का रूप हो जाता है, और ये श्रद्धा हृदय के अंदर अंतःकरण में श्रद्धा का प्रभाव पड़ता है, उसके कारण आदमी वैसा ही होता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है, यह श्रद्धा जैसी श्रद्धा वैसा आदमी, श्रद्धा के अनुरूप आदमी बन जाता है। श्रद्धामयो अयम पुरुष, यह आदमी श्रद्धा का बना हुआ है, और जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका रूप हो जाता है। तो ये श्रद्धा का विशेष जो तीसरा श्लोक भगवान के द्वारा कहा गया है इस अध्याय में, वो श्रद्धा श्रद्धा का विशेष रूप है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, सत्वानुरूपा सर्वस्य, हरेक का जो अस्तित्व है वो श्रद्धा से भया बना हुआ है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष योश श्रद्धा स एव स, जो श्रद्धा है वो आदमी है, उस आदमी की पहचान क्या है, जो उसकी श्रद्धा है वो वैसा ही वो आदमी है। और श्रद्धाओं का बहुत ज्यादा तीन गुणों के मिक्सचर से बहुत प्रकार की श्रद्धाएं बनती है, और इसी श्लोक के भावार्थ में आपको एक चीज मिली थी विशेष रूप से, क्या ज्यादा पंथ क्यों है, ज्यादा मजहब क्यों है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा अलग है, और मजहब का अर्थ होता है फेथ का अर्थ श्रद्धा, इसलिए अलग प्रकार के लोगों की श्रद्धा है, इसलिए अलग मान्यता है, अलग पूजा की विधि है, अलग देवता है, हर एक के अपना श्रद्धा के अनुसार है। तो ये उसका अपन ने पढ़ा था। इसके बाद सतोगुण के लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण के यक्ष राक्षस की, और तमोगुण के भूत प्रेत की पूजा करते हैं। दो श्लोक निश्चित रूप से राक्षसी असुरी प्रकृति के लोगों के दो प्रकार के, ये ठीक नहीं है, चेंज करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसके बाद जो दो श्लोक कल हमने पढ़े थे, 5 और 6, इसमें और चौथे श्लोक में अंतर क्या है? कल अपन ने एक बात की थी कि शास्त्र का नियम जानता है, मानने की इच्छा भी है, लेकिन आलस के कारण प्रमाद ऐसे कौन करे, अभी ऐसे ही कर लो। जैसे अब कौन उठ के मंदिर तक जाए, यहां से भगवान की तरफ हाथ जोड़ लो, ऐसे कौन उठ के जाए, यहीं प्रणाम कर लेते हैं। तो इसका मतलब मानने की इच्छा है, लेकिन शरीर के कष्ट के कारण, आलस के कारण वो नहीं कर पा रहा है। तो वो तो आ जाते हैं सतोरजो गुण तमो गुण में, लेकिन दूसरे जो मानने को ही तैयार नहीं है, वो है 5 और 6 श्लोक, वो असुरी प्रवृत्ति के हैं। शास्त्र को मानते नहीं है, अपना नियम, अपना रास्ता, अपनी तपस्या वो अलग अपनी निकाल लेते हैं। और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था भूख हड़ताल वाले अपनी तपस्या निकाली है भाई, किसी काम को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए। तो ये जो है, ये असुरी प्रवृत्ति के निश्चित है। इसके बाद 3 प्रकार के आहार का वर्णन किया था। आहार खाने का विशेष उद्देश्य क्या है? 3 चीजें क्या? आयु, बल, मन की शुद्धि, सत्व संशुद्धि। मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि भोजन खाने का उद्देश्य है। तो प्रसाद मतलब भोजन खाने का मतलब मन शांत होना चाहिए, एजिटेट करने वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। तो भोजन का उद्देश्य है आयु की वृद्धि हो, शरीर रुष्ट पुष्ट हो, मतलब शरीर में बल हो, काम करने की शक्ति हो, और अंतःकरण की, मन की शुद्धि हो। ये सत्व शब्द को मन की शुद्धि में लिया गया, जो दूसरा शब्द है आयु, सत्व, बल, आरोग्य। तो ये श्लोक है 8वें श्लोक से लिया गया है। तो ये भोजन का उद्देश्य है। अब जो भोजन आयु कम करने के, जैसे नशा करने वाला आदमी, मानो भोजन के अंतर्गत शराब पीता है, किसी की आदत हो गई है, तो उससे आयु कम होगी कि नहीं होगी? बीमारी जल्दी लगेगी, आयु कम होगी। और मन, उसका मन क्या शुद्ध हो सकता है? शांत होगा क्या? मन शांत नहीं हो जाएगा, वो अपने आप को ही भूल जाएगा, तो मन कहाँ उसका ठीक तरह से सोच सकता है। तो ऐसे भोजन जिनसे आयु कम होती है, भागवत में जहां ये श्लोक है, कलयुग के लोगों की आयु कम होती है, वो बेचारे, उनका भाग भी अच्छा नहीं होता है। अल्प आयुषः, प्रायः अल्प आयु होते हैं। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं अल्प आयु इसलिए नहीं है, कलयुग में सबकी उम्र 100 साल होनी चाहिए थी, लेकिन अपना खान पान और व्यवहार ऐसा उन्होंने बिगाड़ दिया है कि समय से पहले मरने की तैयारी कर रहे हैं। कभी आपको बताया था, हमने एक आदमी को, मानो सिगरेट पीता था बहुत ज्यादा, और डॉक्टर को बोलता था खांसी होती है, दवाई दो, बोला सिगरेट छोड़, बोला ये नहीं छूटेगी, दवाई दो लेकिन सिगरेट नहीं छूटेगी। वो कोई साधु संत दवाई देता था, उसके पास गया, उसने बोला हाँ हाँ दवाई खाओ, सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, बोला दवा के पियो, हमारी दवाई से फिर भी आपको फायदा होगा। अरे आप तो अच्छे वैद्य मिले हैं, क्या फायदा होगा? बोला फायदा पहला ये होगा कि आपके घर में चोर नहीं आएगा, दूसरा कुत्ता नहीं काटेगा, और तीसरा बूढ़े नहीं होगे। बड़ा खुश हो गया कि ऐसे बूढ़ा कैसे नहीं होऊंगा महाराज, कुत्ता क्यों नहीं काटेगा? बोला तुम्हारी खांसी इतनी बढ़ेगी, रात सारी खांसेगा, चोर तो आएगा नहीं, डंडे से चलना पड़ेगा, कुत्ता काटेगा नहीं, और बुढ़ापा कहां से आया, पहले ही मर जाओगे बुढ़ा, तुम्हें बुढ़ापा देखने का तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप को पहले मार देते हैं, उसमें भोजन है विशेष रूप से। तो भोजन आयु बढ़ाने वाला खाना चाहिए। अब आज हम यज्ञ की बात करेंगे। 11वां श्लोक पढ़ते हैं, आइए। अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब इस श्लोक में पहला शब्द है अफलाकांक्षी भी यज्ञों। यज्ञ वो जिसमें फल की कोई कांक्षा न हो। यज्ञ किसी फल के लिए नहीं किया जाए तो काय के लिए किया जाए? अपना कर्तव्य समझकर, अपना कर्तव्य समझ के यज्ञ किया जाए। और पहला क्या है? फल की इच्छा न हो। और दूसरा क्या है? विधि दिष्टो या इज्जते, विधि शास्त्र की विधि के निर्देश से किया जाए। दिष्टों का मतलब निर्देश, कैसे किया जाए। इज्जते का मतलब पूजा जो यज्ञ में की जाए वो शास्त्र की विधि के अनुसार हो। विधि दिष्टो, विधि के निर्देश से, शास्त्र के निर्देश के अनुसार हो। और यष्टव्यम का मतलब करना ही चाहिए, मस्ट बी परफॉर्म। यष्टव्यम वो अपना कर्तव्य के समझ के करना ही चाहिए। जैसे जैसे स्त्रीकाल संध्या सबको करनी चाहिए, ये नेम है। जो भी द्विज है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैदिक संस्कृति में, उनके लिए ये आदेश है कि तीन दिन, दिन में तीन टाइम संध्या वंदन करना चाहिए। ये नेम है। क्यों करना चाहिए? कुछ लाभ के लिए नहीं, नहीं, ये करना ही है, ये कर्तव्य है। तो यष्टव्यम का मतलब निश्चित रूप से यज्ञ बगैर इच्छा के, बगैर फल की इच्छा के, शास्त्र के निर्देश के अनुसार करना चाहिए। और फिर मन समाधाय, और उस यज्ञ करने में मन समाधि में हो, अथवा मन को भगवान के, काय के लिए यज्ञ कर रहा हूं? भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करके वो यज्ञ करना चाहिए। तो ऐसा यज्ञ सतोगुण का यज्ञ है। तो सतोगुण के यज्ञ में क्या चीजें आ गई? करना चाहिए कर्तव्य समझकर, फल किसी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो कभी आदमी कहेगा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फिर क्यों करें? तो ये यज्ञ करने से मन समाधाय, आपका मन शांत होगा अपने आप में। अब कुछ मांगेंगे वो मिल जाएगा तो मन अशांति होगा, शांत नहीं होगा। ये अपने आप में फल है मन समाधाय। हाँ, मन समाधाय, मन को एकाग्र करना है। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। अब इस भावात में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रायः देखा जाता है कि जितने भी यज्ञ लोग करते हैं किसी न किसी फल के लिए करते हैं। और क्योंकि यज्ञ की परिभाषा पाश्चात्य देश के लोग नहीं समझ सकते थे कि यज्ञ क्या होता है, कभी कभी कोई लोग यहां से अमेरिका वीजा लेने जाते थे ना, तो वो कहते भाई हम पुजारी हैं, तो बोला तुम क्या कर सकते? बोला फायर सेक्रीफाइस। बोला ये क्या होता है? बोला आग लगाएंगे। बोला आग लगाओगे तो हमारे देश में नहीं आने देंगे। तो वो यज्ञ को नहीं समझते, फायर सेक्रीफाइस या यज्ञ से उनको भय लगता है, भाई आग क्या जलाएगा उधर। हाँ, आग जलाने का तो मना है। तो इसलिए प्रभुपाद ने यज्ञ शब्द को भावार्थ में मंदिर में जाना कर दिया। उन लोगों की समझ के हिसाब से आप देखिए, भावार्थ में प्रभुपाद कह रहे मंदिर में लोग जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए नहीं, भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं। पर क्यों मंदिर में गए थे? भगवान के दर्शन के लिए गए थे, ये कोई नहीं कहेगा। प्रार्थना करने गया था, क्या प्रार्थना करने गया था? कुछ मिलना चाहिए। प्रभुपाद की भावार्थ देखिए इसके ऊपर है कि चर्च में, मंदिर में लोग केवल भगवान का दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, कि भगवान के ऊपर मन केंद्रित करके थोड़ी देर शांति से बैठे, इसलिए नहीं जाते, कुछ ना कुछ भगवान से मांगने के लिए जाते। और बहुत से लोग मंदिर से वापस आए, पूछो क्या देखा? बोला कोई कुछ भी नहीं था उधर। तो फिर गए क्यों थे? कोई नहीं कहता बहुत सुंदर भगवान का दर्शन करके, इसके कोई ज्यादा ज्यादा कहेगा पंडित जी बैठा था, कथा कर रहा था, फलाना आदमी उधर मिला, भगवान देखा कि नहीं देखा उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। आप देख लेना, कभी हम कहते हैं मंदिर में लोग जाते हैं भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़े होते हैं, देखा जिसको देखने गए हैं उसके लिए सामने आंखें खड़े बंद करके खड़े होंगे और आंखें खोलेंगे तो सिर्फ अड़ोस पड़ोस को देखने के लिए। ये उद्देश्य नहीं है मंदिर में जाने का, मतलब भगवान को चरणों से लेकर भगवान के पांव के उंगलियों के ऊपर वो पुजारी लोग बहुत सुंदर सुंदर अंगूठियां लगाते हैं अलग कब डिफरेंट कलर के मैचिंग कलर का, फिर उसके ऊपर पांव के ऊपर पायल होती है, कभी चांदी की होती है कभी गोल्डन कलर की होती है, फिर फूलों का एक बहुत सुंदर पांव में फूल लगाते हैं, कभी तुलसी लगाते हैं और तुलसी पत्ता और चंदन लगा हुआ दिखता है, वहां से देख के ऊपर आस्ते आस्ते जाना चाहिए, वो यहाँ कमर में करधनी बंधी हुई होती है, फिर ऊपर माला के, तो ये पूरा एक मेडिटेशन है, ध्यान है मंदिर में जाने का उद्देश्य। वही अपने आप में मन को इतना समाधि में शांत, प्रभुपाद जी कहते ठाकुर जी का दर्शन या ठाकुर जी की पूजा करना खुली आंख की समाधि है, आंख बंद करने वाली समाधि नहीं है, खुली आंख की समाधि है। एक एक अंग के ऊपर ध्यान केंद्रित होगा ना, यहां क्या लगाना है यहां क्या लगाना है, ये ठीक लग रहा है नहीं ठीक लग रहा है, ये समाधि है अपने आप में। तो मंदिर में जाना किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, ये सतोगुण का नहीं है, तो इसलिए अभी भी भक्त लोग कोई कृष्ण प्रीति अर्थे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा हूं। अपन यज्ञ करते हैं मंदिर में, विवाह के समय यज्ञ करते हैं, दीक्षा के समय यज्ञ करते हैं, तो कोई उसमें इच्छा नहीं करते कि हमको क्या मिलेगा इसमें से। अथवा भक्त जो मंदिर में रहते हैं वो दर्शन करने के लिए सुबह मंगल आरती में कुछ पाने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उसका कर्तव्य इसलिए जाता है, वहां बैठ के जप रोज करता है कुछ मिलेगा इसलिए नहीं जाता है, ये मेरा धर्म है इसलिए मैं वो करना ही है। ये एक प्रकार का ऐसे समझना चाहिए जो कुछ भगवान ने सुविधाएं दी है हमको इस दुनिया में जीने के लिए, उसके बदले में रोज जाके भगवान के पास बैठकर उसका धन्यवाद करने के लिए जाके बैठना चाहिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, जो दिया है उसकी मेहरबानी मानने के लिए जाना चाहिए। तो ऐसा यज्ञ ये सतोगुण का यज्ञ। अब तमो अब रजोगुण के यज्ञ को सुन लीजिए। अभिसंधायतो फलम दंभा अर्थम अपि चैव यत् इज्यते भर्तश्रेष्ठा तम यज्ञम विधिराजसं। अभिसंधाय तु फलम, संधाय का मतलब जोड़ देता है, यज्ञ के साथ जोड़ देता है फल की इच्छा को, क्यों यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तो स्वर्ग के लिए जाने वाले यज्ञ करने वाले भी नहीं बचे, अब तो यहां क्या चाहिए, इधर के लिए यज्ञ कर रहे, यहां फल मिलना चाहिए हमको, ये यज्ञ कर रहे हैं यहां के फल ले लिए के लिए अथवा दुख को दूर करने के लिए। तो फल से संबंध रखकर, अभिसंधाय का मतलब फल से संबंध रखकर यज्ञ करे। और एक दूसरा यज्ञ क्या उद्देश्य क्या है, एक तो फल के लिए करे, दूसरा दंभार्थम। दंभार्थम का मतलब ये महाराज ये यज्ञ बहुत बड़ा कराया इसने, हमारे यज्ञ को भी देखना आके, काशी से 100 पंडित बुलाए हैं पूरे, पढ़ेंगे क्या, वही शास्त्र पढ़ेंगे जो एक पढ़ेगा ना, गांव वाले को क्यों नहीं बुलाया, काशी वाला क्यों बुलाया, गांव वाले को इतनी काशी सब लोग कहेंगे काशी के पंडित बुलाया है ना, तो दक्षिण भारत से इस बार हम बुला रहे हैं यज्ञ के लिए पंडित, 1008 कुंडी वाला यज्ञ करेंगे, आप देखना हमारे यज्ञ को, तो आपको देखेंगे आपके यज्ञ को देखें महाराज। ये हो गया दंभार्थम। दंभार्थम का मतलब भगवान के लिए यज्ञ नहीं है, अपने प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसा यज्ञ करते हैं प्राय, आजकल जितने भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो बाहर के लोग पैसों वाले नहीं, पैसा सेठ देते हैं और महात्मा अपना नाम करता है उसमें, ये दूसरा दंभ है, पैसा देने वाला दूसरा, नाम दूसरे का होता है, देखा है ऐसे यज्ञ।
तो ये यज्ञ कैसा है? इज्जते, इज्जते मतलब पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं। भरत श्रेष्ठ अर्जुन को संबोधन भगवान करते हैं, और ऐसे यज्ञ को रजोगुण का यज्ञ माना जाता है। अश्वमेधाजी यज्ञ करते थे पहले वेदों के अनुसार क्षत्रिय लोग। तो भरत श्रेष्ठ कहा है कि आप तो भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, ऐसे यज्ञ क्षत्रिय लोग करते थे, राज भाई पूरे सारे राजा हमारे अधीन हो जाए तो फल हो गया ना। तो ये रजोगुण के यज्ञ है, ये क्षत्रियों को करने होते हैं। ब्राह्मणों के यज्ञ कुछ और होते हैं, अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। तो ये यज्ञ रजोगुण। अब तमोगुण के यज्ञ का कमाल देखिए। विधिहीनम, विधि नहीं है शास्त्र, और असृष्ट अन्नम, किसी को प्रसाद भी नहीं बांटेंगे। असृष्ट अन्नम मतलब अन्न नहीं बांटेंगे, असृष्ट अन्नम का मतलब है भगवान को अर्पण करने के बाद अन्न को बांटना, भोजन का प्रसाद बांटना। और तीसरा क्या है, मंत्रहीनम, कोई मंत्र पढ़ेगा नहीं, पढ़ने वाले को मंत्र पढ़ने आएगा नहीं, उच्चारण भी ठीक नहीं कर पाएगा, मंत्रहीनम। अदक्षिणम, पंडित जी को दक्षिणा नहीं देगा। इसका अर्थ है कि पहले दो यज्ञ वाले दक्षिणा देते हैं, वहां लिखा नहीं है लेकिन वो देते हैं। अदक्षिणम, दक्षिणा भी नहीं देगा। श्रद्धा वरहितम, श्रद्धा भी नहीं है। यज्ञम तामसम परिचक्षते, तमोगुण के यज्ञ के ये लक्षण है, न श्रद्धा है, न विधि है, न अन्न का प्रसाद का वितरण है, न मंत्र है और न दक्षिणा है। प्रभुपाद जी ने इसके भावार्थ में लिखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे विशेष रूप से देवता की पूजा के लिए बड़ा यज्ञ करते हैं, विधि विधानों से काम नहीं है, पैसा कितना मिलेगा इस यज्ञ में उसका उद्देश्य। आई आई ये सुनील जी हैं, हरे कृष्ण। प्रभुपाद ऐसे लोग यज्ञ करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, और पैसा मिल जाता है उस यज्ञ से तो फिर उस पैसे से भोग करते हैं, घूमने जाते हैं। हाँ, पैसा आ गया तो पैसे का अपने इंद्र तृप्ति के लिए, भोग के लिए उसका उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसे यज्ञ करते हैं तांत्रिक लोग, खुद भी कष्ट देखते हैं, दूसरे को कष्ट आना चाहिए। इस यज्ञ का प्रभाव क्या होना चाहिए, हमारा दुश्मन जो है दुखी हो मरे। ऐसे लोग भी बहुत करते हैं काम, तांत्रिक लोग, वो भी यज्ञ करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, दूसरे को कष्ट देने का। तो ऐसे यज्ञ जो है असुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। रावण कैसा यज्ञ कर रहा था, सर काट के यज्ञ के अंदर आहुति देता था, तो कष्ट वाला यज्ञ अपने लिए कर रहा था। पाना क्या था, न मिलने जैसे वरदान पाने के लिए, अमर हो जाऊं। अब अमर कैसे होगा, तो ये तमोगुण के यज्ञों का, असुरी प्रवृत्ति के लोगों के यज्ञों का वर्णन है। अब यज्ञ के बाद दूसरा विषय है, तीन प्रकार के तप का वर्णन है, शरीर का, वाणी का और मन का। अब रजोगुण सतोगुण तमोगुण का नहीं है, पहले ये इनका है, फिर यही रजो सतो तमोगुण में भी हो सकता है, आगे आएंगे तो तप की परिभाषा आएगी। शरीर का तपस्या क्या है, हमको शरीर मिला है ना, इसकी तपस्या क्या है। अब शरीर की तपस्या क्या है सुन लीजिए, देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देव का अर्थ भगवान अथवा देवता, द्वेज का मतलब ब्राह्मण, गुरु का मतलब गुरु, और प्रज्ञा का मतलब घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी आदि, ये चार वर्ग हो गए। भगवान, देवता, ब्राह्मण, गुरु और बुजुर्ग बड़े घर के, इनका क्या करना चाहिए? पूजनम, इनका मान, भगवान की पूजा, इन सबका सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्ण, इनका सम्मान करना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण मिले तो उसको सम्मान देना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, और बड़े बुजुर्ग माता पिता घर में है उनको सम्मान, प्रणाम करना, सम्मान करना, उनकी सेवा करना, ये धर्म है। ये शरीर की तपस्या है, मतलब तपस्या का मतलब आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको करना चाहिए। तपस्या का मतलब वॉलंटरियली उसको एक्सेप्ट करना, थोड़ा कष्ट है उसमें लेकिन अपनी इच्छा से करने का संकल्प करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सेवा सम्मान करना ये शास्त्र के अंतर्गत धर्म है हमारा, ये शरीर की तपस्या है। अब ये प्रश्न हम पूछते हैं प्राय, अभी आप लोग तो भक्त हैं कोई बात नहीं, कितने माता पिताओं से पूछने कि आपके कितने बच्चे आपके सुबह चरण स्पर्श करने का उन्होंने नियम है? नहीं है, इसका मतलब शास्त्र की शिक्षा बहुत कम होती जा रही। पहले घर में माता पिता की सेवा से शुरू करोगे तो आगे बढ़ोगे। कई साल पहले भागवत का प्रवचन सुन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में, उनकी दिनचर्या क्या थी? सुबह अपने घर से निकलने के बाद पहले बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करने जाते थे, अगस्त्य महाराज का, वसुदेव का, सब जितने बड़े बुजुर्ग थे उन सबका चरण स्पर्श करने जाते थे। ये उनका नियम था रोज का। भगवान को किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये स्थापित करने के लिए सिद्धांत, भगवान प्रतिदिन ये कार्य करने जाते थे। उस दिन से हमने ये निर्णय किया भाई अपने गांव में, घर में जब जाएंगे जितने बुजुर्ग हैं जो कम से रिश्तेदार है उनको उठ के पहले घर से निकलेंगे तो जाके चरण स्पर्श करेंगे, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? सुखी रहो तो करेगा, बेटा सुखी रहो इतना तो कहेगा ना। ये बहुत बड़ा कवच है, ये सुरक्षा का कवच है बहुत बड़ा। रोज कहता कभी उसके हृदय से ऐसा निकल जाता है, माता पिता की आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो बच्चे को आप सिखाएंगे तो सीखेंगे नहीं, आप अपने से बड़ों को करेंगे तब वो देख के सीखेंगे। आप घर के अंदर, कोई भाग्यशाली के घर में माता पिता है तो रोज सुबह अपना नित्य कर्म स्नान पानी करके भगवान को जैसे प्रणाम करने जाते हैं उनको जाके भी चरण स्पर्श करने का नियम बना लो। गीता का आदेश है, बना लो नियम। अपने देखा आप कहा आपके घर में कहा बच्चों को भगवान को प्रणाम करो, नहीं पहले तो यहां से शुरू करो ना, तो पहले माता पिता से शुरू करने का। और माता पिता सब कुछ बच्चों को देने के लिए तैयार है, सबका धंधा करके पैसा कमाते हैं बच्चों को देने के लिए, लेकिन बच्चा चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकेगा उसका दिल बहुत खुश हो जाएगा। अगर आप माता पिता है तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कैसे लगता है उस वक्त। यही आपको कुछ नहीं चाहिए उनसे वापसी में, केवल ये आदर कर लेते हैं उससे आपका दिल बड़ा खुश हो जाता है। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं कई दिनों के बाद अचानक कोई पांव पड़ने लगता है तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि आज ये कैसे कर रहा है, उनको ऐसे लगता है कि आज कैसे इसको सदमती आ गई। तो ये कार्य आप जहां भी घर में बड़ा बुजुर्ग जो भी है, पिता है, माता है, सास है, ससुर है, कोई भी है, तपस्या का मतलब है नहीं चाहते हुए भी करना। तपस्या का अर्थ यह कि चाहते नहीं है लेकिन फिर भी करना है, तपस्या इसलिए इसका नाम रखा है, तपस्या शरीर की है ये। तो ये करने से जो आदमी आपको कहेगा सुखी रहो वो फिर थोड़ी देर के बाद आपको दुखी नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने मुख से आपको सुखी करने के लिए कहा है। अब जो आदमी एक बार अपने मुंह से कह देता है सुखी रहो फिर आपको वो दुखी करने के लिए कोई भी और थोड़ी देर के बाद आपने गलत भी कर दिया तो उसके मन में आएगा नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा आज्ञाकारी है। तो घर के अंदर जो थोड़े भी कलेश होंगे अपने आप समाप्त हो जाएंगे, बहुत कलेश खत्म हो जाएंगे। नहीं चाहते हुए करना है, ऐसे मत समझे कि हम हमारी इच्छा होती नहीं, इच्छा नहीं होती है तो भी करना है। और आप ये करके देखिए, थोड़ा समय करके देखिए और देखिए कि कितना प्रभाव पड़ता है, उनके हृदय पिघल जाएंगे और आपका ये यज्ञ हो जाएगा, आपकी ये तपस्या हो जाएगी। तपस्या पवित्र करती है। तपस्या का काम क्या है? कोई चीज तपते, सोने को तपाते हैं तो पवित्र शुद्ध हो जाता है ना, तो ये तपस्या हमको पवित्र करने के लिए है। हर घर के अंदर ये सदाचार सिखाना अति आवश्यक है। हम भक्त बन गए हैं लेकिन बड़ों का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो हमारी भक्ति में बहुत बड़ी त्रुटि है। बड़े क्यों नाराज होते हैं जब हम भक्ति करने जाते हैं? तो सत्संग में जाते हैं तो बड़ों को नाराज क्यों होती है? उनको ये डर लगता है कि हमारा रिश्ता जो है वो शायद ये अब टूटेगा। इसलिए आप इतना ज्यादा उनका सम्मान और प्रेम दें भक्ति करने के बाद, वो समझे ये तो वहां से सुधर के आया है। उनको ये भय नहीं हो कि बिगड़ के आया है। ये एक एक्शन, एक ही अभ्यास में, ये गीता का सिद्धांत है कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, तो उसमें गुरु ब्राह्मण आदि सब आ जाते हैं। लेकिन जो चीज आपको निकट में रोज है वो घर में स्थापित हुआ ठाकुर जी और बड़े बुजुर्ग घर में है। इसलिए पुराने जमाने में वेद पढ़ाने के बाद जब पंडित जी, जब गुरु घर से वापस भेजता था ना बच्चों को, तब पहला श्लोक ये सिखाता था, आखिरी श्लोक जो सबको आदेश के रूप में होता था, निर्देश के रूप में होता था, मात्र देवो भव, तेरी माँ तेरे लिए पूजने है, रोज उसका प्रणाम करना, उसकी सेवा करना। पितृ देवो भव, तुम्हारा पिताजी तुम्हारे लिए सम्मान्य पूजने है। आचार्य देवो भव, तीसरे नंबर पर गुरु का नाम आता था। जिसने जितना ज्यादा इस शरीर को, जितना शरीर को ज्यादा जिसने पाला पोसा है उसको पहले सम्मान दिया गया है। सबसे ज्यादा मान है शरीर को पाला पोसा है ना, 9 महीना गर्भ में पाला, हर दुख बस के बचपन के, जब हम कुछ नहीं कर पा सकते थे, करवट भी नहीं बदल सकते थे, तब जिसने हमारी देखभाल की, और फिर पिता जिसने हमको उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, उसका नाम दूसरे नंबर पे आया। फिर आचार्य का नाम आया जिसने हमारे को समार के समाज के अंदर एक भला मानस बना दिया। तो ये तीन नाम एक दूसरे के बाद ऐसे आए हैं। पहले आचार्य का नाम नहीं कहते हैं, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कोई मेहमान आ जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। ये मर्यादाएं हुआ करती थी पुराने जमाने में। कभी हम कहते हैं भारत के अंदर होटल कभी नहीं हुआ करता था, भोजन होटल के ऊपर खाना भारत की संस्कृति नहीं है। जब अतिथि देवो भव सिखाया जाता था, कोई मेहमान आ जाए तो तुम्हारे लिए घर में पूजनीय है। पुराने जमाने में घरों के बाहर अतिथिशालाएं बनी होती थी, हर घर में एक कमरा होता था अतिथि के लिए और भोजन। तो महाराज युधिष्ठिर के पास 10,000 रसोई रखे हुए थे केवल नगर में आने वाले अतिथियों के भोजन के लिए, 10,000 उस जमाने के हिसाब से उसने ये व्यवस्था की हुई थी। अभी तक भी गांव, किसी भी गांव में जाओगे तो रहने और भोजन की कोई समस्या नहीं। अभी आज भी जाओगे तो सम्मान के साथ लोग देते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर ऐसा इसने आक्रमण कर दिया है कि रहना भोजन आए हुए अतिथि के लिए बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता था पुराने जमाने में। जी अभी भी वृंदावन में कोई हजारों के हिसाब से संत रहते हैं, कोई संत चूल्हा नहीं जलाता है। किसी भी घर में कहता है माता भिक्षा दे तो रोटी मिलती है। हम तो संत भी नहीं, ऐसे घूमते कभी जाते हैं ब्रजान बाहर के, बोलते हैं माँ रोटी दे, एक रोटी हमको भी मिल जाती, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भीख मांगना तो आना चाहिए, ये भी तपस्या है शरीर की। और ये चार तपस्याओं के बाद है शौचम, पवित्रता, शरीर को पवित्र रखने के लिए सुबह स्नान आदि करना नित्य नियम ये होना चाहिए। ये शरीर की तपस्या है निश्चित रूप से रोज का। तो सभी लोग आजकल सभ्य हैं, ये कोई समस्या नहीं है कि किसी को कहना कि रोज स्नान करना ये, लेकिन फिर भी दुख से कहना पड़ेगा कि बहुत से लोग सर्दी के मौसम में स्नान करने से बहुत भागते हैं। अब गीजर लग गए हैं, उनकी मेहरबानी है गीजर की। पाश्चात्य देशों में इतना ज्यादा स्नान करने का आदत नहीं है लोगों को,
किसी का कोई प्रमाण इसका, इसका प्रमाण सारे आपकी स्प्रेज है, जितनी स्प्रे बनी है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों को नहाने का टाइम नहीं है, बाहर निकला थोड़ा लगाया काम चलाया, ये इस बात का प्रमाण है। गृहस्थी को दो बार स्नान करना है ऐसा नियम है, सन्यासी को तीन बार स्नान करना है। वैसे शौचालय के बाद स्नान करना चाहिए ये सिद्धांत है, तो ये शौच और अंदर का शौच कैसे करना है, अंदर की पवित्रता भगवत नाम उच्चारण से, बाहर की शरीर की पवित्रता स्नान आदि से, और हृदय की पवित्रता भगवत नाम उच्चारण से, शौचम आर्जवम। आर्जवम का मतलब बहुत सादा जीवन होना चाहिए। हाँ, जीवन कैसा होना चाहिए, बहुत सरल और सादा होना चाहिए। पकाने के लिए, पेट भरने के लिए खिचड़ी भी ठीक है, एक देगड़े के अंदर बन जाएगी, 15 मिनट में तैयार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब सादा जीवन है तो 5-7 सब्जी उसमें डाल दी, दाल भी उसमें, चावल भी उसमें डाल दिया, एक देगड़े में 15 मिनट में रोटी तैयार हो गई कि नहीं हो गई, बस उसके साथ थोड़ा सा दही है तो उस मिलाया के दही पापड़ घी आचार खिचड़ी के हैं 4 यार, दो और भी इसमें ऐड करते हैं नींबू एक, और एक और भी कह रहा था मुझे कोई, लेकिन ये 4 खिचड़ी के साथ, ये तो सूखे पड़े होते हैं कहीं भी। अब ये सरलता होगी नहीं, अब एक ऐसी चीज बनानी है मानो वो मक्की की रोटी, तो फिर उसको कितना कूटना पीटना पड़ेगा, 3 दिन लगते हैं उसको, भिगो एक दिन भिगा के रखो, दूसरे दिन सुखाओ, तीसरे दिन आधा दिन तो किचन में चला जाता है पूरा। सादे जीवन का मतलब सरल चीज, बहुत सरल चीज, खाने में सरलता, कपड़े में सरलता, घर में सरलता, कम सामान होगा तो सफाई आसान होगी, जितना सामान ज्यादा उतना टाइम ज्यादा उसके ऊपर लगता है। तो सरलता, सरल जीवन का मतलब जिसमें टाइम हमारा बेकार में न काम की चीजों के ऊपर नहीं जाए, कुछ टाइम बचे जिससे हम कम से कम मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सादा जीवन, ऊंच विचार। अब क्या है, जीवन ऊंचा है, सादे विचार है। ऊंचे का मतलब नवे माले पे जीवन है। जीवन बहुत ऊपर हो गया है, 10-11 माले पे गया। हवा हवा में जीवन है। थिंकिंग ब्लॉक हो गया दिमाग, थिंकिंग सोच भी हमारा आस्ते आस्ते बदलता जाता है। सादा जीवन, हर का हर विचार से सादा जीवन, आदमी सरलता से जितना जिएगा उतना परेशान कम रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड हमने जीवन बना लिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये मोबाइल, एक मोबाइल ने हमको कितना परेशान किया आप सोच लीजिए, रोटी नहीं खा सकते, रोटी खाते हुए 3 बार आपको बीच में से हेलो करना पड़ता। अब ठीक है, इसकी आवश्यकता है, लेकिन आप इसको रोटी खाने बैठो तब बंद कर, ये साइलेंस में रख के दूसरे कमरे में रख दो, अभी सुख शांति से भोजन तो करने दो। कुछ लोग हैं, उनने नेम बना रखा है, इसकी यूज तो है लेकिन नेम बना रखा है कि 9 बजे ऑन करेंगे, उससे पहले ऑन नहीं करेंगे सुबह। लोगों को पता है, लोगों को अगर हमारी जरूरत होगी तो कैसे भी ढूंढ लेंगे, ये आप निश्चित जान लो। वैसे असल में ये मोबाइल है, इसका मतलब जब आप चलते फिरते हो तब काम आएगा, लेकिन जब घर में सोए हो तब इसको क्यों यूज करते हो, इसका नाम मोबाइल है तो घर में वो पुराने फोन ही खत्म हो गए, हाँ वो निकल गए, अब घर में ही यही सोए हुए भी इसी के ऊपर मात्र, और दूसरा आदमी हमको ढूंढ ले इसके लिए फोन नहीं है, आप दूसरों से अपना काम निकालो कैसे इसके लिए फोन है। अब हो क्या रहा है, दूसरे आपको इसके ऊपर ढूंढ रहे हैं, इसका उद्देश्य दूसरा था, लेकिन हम इतने इसके आदि। अब जिसके पास नहीं है वो बड़ा आदमी है, पुराने जमाने में जिसके पास होता था वो बड़ा था, अब जिसके पास नहीं है वो बड़ा आदमी। दे दिया कर सेक्रेटरी को, बोलो सब तुम समाचार ले लिया करो, हमको बाद में बताना,
پریشانی ہے کہ نہیں, ہوئی ہے کہ نہیں ہے پریشانی؟ بہت ایجیٹیٹڈ زندگی ہو گئی, دکھ کی خبر تھوڑی دیر سے ملنے سے کم 4 گھنٹے تو سکھ سے بیت جائیں گے. پہلے لوگوں میں پریم کتنا تھا, 3 دن کے بعد نہیں, کوئی رشتے دار کسی گاؤں سے مہینے کے بعد 2 مہینے آتا تھا, 1 گھنٹہ تو کم سے کم بیٹھ کے بات کرتے تھے, کیسے آئے, کہاں سے آئے, بڑا دل لگتا تھا. اب سال کے بعد بھی آئے تو بولا کل تو آپ سے بات کی ہے, بیٹھو 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 پھر آپ سے ملیں گے. پرانے زمانے میں دیکھا تھا کتنا پریم تھا, اس لیے پریم تھا, دیکھا نہیں تھا تو رشتے دار آ گئے بیٹھے اس کے ساتھ بھوجن, کل تم سے بات کی, سال کو کیا ہو گیا, اب تو سال کا بھی پرواہ نہیں, ابھی تو بات کر رہے تھے آپ سے. تو بہت پریم کم ہوتا جا رہا ہے اس کارن سے. تو یہ سمپلسٹی تھوڑا جیون میں آنے سے ہمارا جیون سرل ہوگا, پریم مائے ہوگا, شانتی مائے ہو جائے گا. برمچریم, برمچریم کا پروپاد نے یہاں ارتھ لکھا ہے گرست آشرم میں جو استری پرش ہیں ان کا ہی جیون میں سمبند صرف وہ ہے, وہ برمچاری ہے. یہاں برمچاری وہ نہیں لکھا ہے جو آجیون برمچاری رہتے ہیں, وہاں اس کا ارتھ یہاں نہیں لکھا ہے. یہ برمچاری ایک اوستھا ہے, جیسے اسٹوڈنٹ ہے یہ برمچاری رہنا ہے ان کو, اس کے بعد یہ گرست میں جاتے ہیں تو اپنے وواہت استری پرشوں کا جیون رہے گرست والا, تو اس کو برمچاری مانا گیا ہے. پروپاد جی نے برمچاری اس کو کہا ہے. اہنسا, اہنسا کا مطلب دوسرے کسی بھی جیو کا پرگتی کو نہ روکنا, ہاں اہنسا, لیکن اس کے اندر اہنسا کے اوپر پروپاد نے بھاوارتھ لکھا نہیں ہے. یہ شریر کی تپسیا ہے, شریر کا یہ تپ ہے, تو اس میں ہم کو پریکٹیکلی جو ہے وہ برمچاری اپنے گرست جیون میں برمچاری رکھنا, پویترتا کے لیے بھگوت نام روز جپنے کا نیم بنانا, اور سنان آدی تو نیم سے کرنا ہی ہے, اور بڑوں کا سنمان کرنا, دیوتا کا بھی, گرو کا, دیوتا کا, برہمن کا آدر کرنا. اب برہمن کا کم سے کم سارے برہمنوں کو سے ہم جانتے نہیں ہیں, لیکن ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی اپنے کل کے لیے ایک برہمن رکھا ہوتا ہے پوجا پاٹ کرنے کے لیے, تو اس برہمن سے ہمارا بھاو کیا ہوتا ہے آپ دیکھنا اچھی طرح سے. ارے 50 روپے دے دینا, 100 روپے مہاراج کو بلاؤ بلاؤ کام کرا لو, یہ سنمان نہیں ہے, یہ ترسکار کی درشٹی ہے. ضروری ہے کیا کریں گے, بلاؤ مہاراج کو, کرانا پڑے گا پنڈ دان, کیا کریں, یہ آئے گا اس کے آگے آئے گا دان میں, یہ تموگن کا بھاو ہے. کیسے بھی وہ اس سے آپ کو برہمن کر, جیسے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں نا, بڑا کتنا سنمان کے ساتھ ڈاکٹر کو لے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے, تو جیسے ڈاکٹر کو سنمان سے لے کے آتے ہیں گھر میں بیمار ہوتا ہے کوئی تو ہماری مجبوری ہے, ایسے ہمارے سماج کی بیماری ہے اس کا, وہ پنڈت جی جو ہے سماج کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آتا ہے, وہ سنسکار کرتا ہے, مطلب پوتر کرنے کی ودھی کرنے کے لیے آتا ہے, تو اس کا سنمان ہردے سے کرنا چاہیے. برہمن کے لیے سنمان کی درشٹی ہونی چاہیے. اب برہمنوں نے کام ایسا کچھ کر لیا اس لیے لوگ دکھی ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. شادی کے اوپر کتنا خرچہ کرتے ہیں لوگ آج, لاکھوں روپے, اور برہمن کو 1000 روپیہ دینا ہوگا پوجا کا تو بھی کڑ کڑ کر کے اس سے, ارے اصل میں شادی کرائی اس نے, تمہارا سارے اس پروگرام کے پیچھے وہ 1 گھنٹہ اس نے کیا, وہ مین ہے, اس کو کوئی امپورٹنس نہیں. ارے مہاراج 1000 روپیہ کو کیا کرے گا, ارے کیا کرے گا, تو کیا کر رہا ہے, 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کیا کر رہا ہے, 2 ٹائم کی روٹی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا, وہ ادھر دینے میں بہت کچ کچ کرتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے, جہاں دینا چاہیے صحیح معنی میں وہاں نہیں جائے گی, اچھا نہیں کرتے. اور ویسے آدھا بیکار میں لوگ لے جاتے ہیں, تو سنمان کی درشٹی اس کی پرتی ہونی چاہیے. برہمن دیوتا آئیے بیٹھیے جلپان کیجیے, تھوڑا شردھا ہونی چاہیے, مان سنمان اس کو دینا چاہیے, وہ بھی آشیرواد دے کے جاتا ہے, وہ بھی 2 منتر بھگوان کے پڑھیں گے تو آپ کو آلیہ آشیرواد دے کے جائے, اس کے لیے سنمان کی درشٹی ہم کو رکھنی چاہیے, اور بڑے بزرگوں کو نشچت روپ سے سنمان کرنا چاہیے. آئیے اب وانی کی تپسیا. انوید کرم واکیم انودویگ کرم واکیم सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वानमयं तपोच्यते। अब वाणी का ये सबसे दूसरा, शरीर के बाद मुख्य वाणी है हमारी, एक से दूसरा तब मुश्किल है। शरीर का तब आसान है, वाणी का तब इससे मुश्किल है थोड़ा। पहला क्या है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। उद्वेग किसको कहते हैं? वैसे उद्वेग का अर्थ है उल्टी आना। उद्वेग शब्द का ऐसे अर्थ है कि खाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, उल्टा आ जाए तो उसको उद्वेग कहते हैं, उल्टा। तो ऐसा वाक्य किसी को नहीं कहना चाहिए कि दूसरा आदमी दुखी हो जाए। ऐसा वाक्य जबान से नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, वो वाक्य मुख से नहीं निकालना चाहिए। अनउद्वेग कर्म वाक्यम, दूसरे को उद्वेग करे ऐसा वाक्य नहीं कहना चाहिए। सत्यम, सच बोलना चाहिए लेकिन कैसा, प्रिय एंड हितम। सच जरूर बोलना चाहिए लेकिन प्रिय होना चाहिए, कड़वा नहीं। हितम, क्या उसका हित है क्या इस बात करने में? हम कई बार ऐसे बोलते हैं तो बोलने से पहले यह सोचना चाहिए, क्या यह सत्य है जो मैं बोल रहा हूं? यह सत्य है क्या? यह सत्य है लेकिन क्या यह प्रिय है क्या? यह प्रिय है लेकिन यह हित के लिए है क्या? इससे किसी को उद्वेग तो नहीं होगा, तब बोलना चाहिए। उदाहरण कह देते हैं, सत्य है विदुर जी आए हैं हस्तनापुर में, जानते हैं कि द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, मालूम है, सत्य है लेकिन ये प्रिय नहीं है, ये पांडवों को प्रिय नहीं लगेगा, इसलिए ये सत्य विदुर ने नहीं बोला हस्तनापुर में, और कहा दुख की खबर है, अपने आप समय आने कर ऊपर पता लग जाएगा, मैं इनके दुख का कारण क्यों बनूं? विदुर ने, मैं दुख का कारण क्यों बनूं? आपने देखा आजकल भी कोई अचानक किसी की मृत्यु की खबर आती है तो लोग बड़े ऐसे मुकेश नहीं जाते, तेरा मर गया, ऐसे कोई नहीं कहता है। कोई बड़े बुजुर्ग को बुलाते हैं, ढंग से घर में जाते हैं, बात करते हैं कि वो कोई बीमार था क्या आपका, ऐसे दूसरा समझ जाता है, लेकिन उसको कहने का कोई विधि होती है, अथवा भोजन कर रहे हैं सब उसी वक्त नहीं कहना चाहिए, अब भोजन कर लेना दे उनको, उसके बाद ये दुख की खबर आधे घंटे के बाद देंगे तो भी तो मर ही तो गया बेचारा, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम मर्यादा के अंतर्गत तो बोलना चाहिए ना। तो ये है कि ऐसा सत्य, इसलिए कहते पहले तोलो फिर बोलो, 32 दांत इसलिए दिए हैं कि 32 बार सोचो फिर जबान से कुछ शब्द निकालो, कोई बोलने से पहले सोचना चाहिए। और आजकल बोलने की भाषा वो ईमेल भी हो गई है, इसलिए बड़े बुजुर्गों का कहना है कभी किसी क्रोध में ईमेल लिखो तो उसी वक्त अपलोड मत करना, रख देना, दूसरे दिन सुबह पढ़ना, हो सकता है बहुत से शब्द आप काट दोगे, उसी वक्त मत भेजना। कभी पैसा कोई नहीं भेजता है, आपने ईमेल लिखी है सब तो उसी दिन मत भेजना, धंधा बहुत जीवंत करना है उससे, दूसरे दिन सुबह आपका मन बदल जाएगा, तब कुछ और थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास करोगे। फोन के ऊपर बात करने का, अभी सामने देख थोड़ी रहा है, यहां से तो आदमी कैसा मुंह कर रहा है पता नहीं लगता है। मुश्किल है वाणी का तप, लेकिन सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय होना चाहिए, सत्य प्रिय हितकारी होना चाहिए, दुख नहीं देने वाला होना चाहिए। बहुत लोगों ने, हम भाई सत्य कड़वा होता है, अभी कड़वा होता है तो तू ही पी ले, दूसरे को क्यों पिला रहा है? दूसरे के लिए कड़वा थोड़ी, तुम अपने लिए कुछ तो करो ना। और एक वाणी का और तप है, वो है स्वाध्याय अभ्यासनम। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र को पढ़ना, उसका अभ्यास करना। तो ये स्वाध्याय अभ्यासनम, ये वाणी का तप है। तो शास्त्र इतने हैं कि उसको अध्ययन करने के लिए कुछ टाइम निकाल। प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों के लिए कि भाई 2 घंटे कम से कम मेरे शास्त्र पढ़ने चाहिए, अथवा घर में 1 श्लोक रोज गीता का पढ़ने का नियम बना देते हैं, 1 श्लोक भागवत का नियम पढ़ने का बना देते हैं, रामायण का 1 आदि चौपाई पढ़ ले, समझ लो ऐसे कोई अपना जीवन में नियम बना लो। तो स्वाध्याय करना ये जबान का कुछ सत उपयोग है। हम तो कभी टाइम कम है, गाड़ी आगे चलानी है, अध्याय पूरा करना है। हम आपको कह रहे हैं अगर आप 1 घंटा पढ़ लेंगे शास्त्र, 1 घंटा जप कर लेंगे, तो जबान को दिन में बोलना है उतने ही शब्द बोलने, मानो 5000 शब्द रोज जबान से निकलने, ये एवरेज है, ठीक है। अगर आपने पहले शास्त्र पढ़ लिया, भगवान का नाम लिया, तो उसमें से 2000 शब्द तो कम हो गए ना, इसका मतलब कहीं झगड़ा वगड़ा कम होगा, क्योंकि पहले कुछ कोटा तो खत्म हो गई ना, जबान को इतना ही बोलने की ताकत है। तो वैसे खाम खा का आप देखा है लोग बेकार कितना बोलते हैं, कभी देखा है इसको? ट्रेन के अंदर आप आराम से एक दिन बैठ के देखो, आमने सामने वाले घंटों भर बोलते रहते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं होता है। बोले ऐसे गवर्नमेंट ने कर दिया, ऐसे उसने कर दिया, यहां ये हो गया, वहां हो गया। एक बड़ा एक पॉलिटिकल आदमी था अपोजिट पार्टी का, उसकी गवर्नमेंट नहीं थी, उसके घर में कोई दूसरा आया नेता, तो वो घंटों भर कहने लगा ये गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, कोई सफाई नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई बिजली नहीं। शाम का वक्त हुआ, अंधेरा हुआ, लाइट चली गई, बोला देखा बिजली का ये हाल है। तो दूसरे मेहमान ने कहा मोमबत्ती तो लाइए जलाए, 1 घंटा ढूंढा मोमबत्ती नहीं मिली। उसने बोला गवर्नमेंट की बिजली से के दुख कम करो, अपने घर में मोमबत्ती पहले संभाल के रखा करो, तुमसे मोमबत्ती नहीं संभाली जाती है, दूसरी की बिजली की परेशानी तुमको लगी। तो ये क्या, प्रायः हम दूसरों की चर्चा करते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको वो जानते भी नहीं कि हम किस चर्चा कर रहे हैं। अभी आप गवर्नमेंट की चर्चा करो, उसको पता है कि आप कर रहे हो, आप बेकार में अपना खर्चा कर रहे हो, जब जवान का खर्चा कर रहे हो, सत्य है कि नहीं? इसलिए कहते हैं 2 सर्किल होते हैं, 1 सर्किल होता है सर्किल ऑफ कंसर्न, हमारी परेशानी क्या है, 1 होता है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेरा प्रभाव कहाँ है। प्रायः लोग सबसे ज्यादा टाइम सर्किल ऑफ कंसर्न में खराब करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसके ऊपर तुम कुछ कर तो नहीं सकते हो। तुम्हारा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है, आप क्या कर अपने घर को साफ रख सकते हो, घर के बच्चों को संभाल सकते हो? इसके ऊपर टाइम ज्यादा दोगे तो ये आपका सर्कल बढ़ेगा, तो आपकी कंसर्न अपने आप कम होने लगेंगी। ये लीडरशिप ट्रेनिंग का 2 गोले निकालते हैं, एक गोला है जिसमें तुम्हारा प्रभाव है वो गोला है, एक गोला है जो तुम्हारी तुम चाहते हो कि ऐसे होना चाहिए जिसको तुम कर नहीं सकते हो, तो कम से कम अपने गोले को बढ़ाओ ना। तो स्वाध्याय करने से हमारा कुछ समय भगवान के सुमरण में लग जाएगा, वो हमारा सार्थक हो जाएगा। अब आइए मुश्किल तपस्या 3 है मन की। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संसुदितेत तपो मानसमुच्यते। इसमें एक शब्द को देखिए, जबान के अंदर तप में मौन नहीं लिखा है। देखो प्रायः लोग क्या कहते हैं, मौन हूं मैं, मतलब बोलूंगा नहीं, लेकिन आप देखिए जबान के तप में मौन नहीं लिखा है। हाँ नहीं है ना, मौन किसके में लिखा है? मन के तप में मौन लिखा है। इसका मतलब मन शांत होना चाहिए, जबान शांत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रायः लोग कहते हैं मैं मौन हूं मतलब बोलूंगा नहीं, यहां देखो जबान के तप में लिखा ही नहीं है मौन, मन का तप मौन है। अब पहला तप क्या है मन का? मन प्रसाद, मन हमारा बहुत शांत होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्टि मन में होनी चाहिए, हाँ सेटिस्फेक्शन ऑफ द माइंड, मन की संतुष्टि मन का तप है। और दूसरा है सौम्यत्वम। वैसे सोम शब्द जो है वो चंद्रमा का नाम है सोम, सौम्यत्वम का मतलब जीवन में शीतलता होनी चाहिए, इसका मतलब दूसरों को हमारे से कष्ट ना हो। मन का सौम्यत्व होना मतलब विदाउट ड्यूप्लिसिटी टुवर्ड्स अदर्स, इसका मतलब शीतलता होनी चाहिए कि दूसरों को ठंडक मिले आपसे, न कि दूसरों को तकलीफ मिले हमारे व्यवहार से। और तीसरा है
आत्म विनिग्रह,
आत्म विनिग्रह का विनिग्रह मन का, मन को वश में करना, मन अपने, मन अपने वश में होना चाहिए। हम मन के वश में ना हो जाएं, मन हमारे वश में हो, मन के हम मालिक बने, मन हमारा मालिक नहीं बन जाए। आत्मविनिग्रह विशेष रूप से निग्रह करके मन को अपने वश में रखना चाहिए, स्वच्छंद नहीं छोड़ना चाहिए। भाव संशुद्धि, अपने भाव की पवित्रता, अपने भावों को, भाव कहां उठते हैं, मन में भाव उठते हैं, भाई तुम्हारे मन का भाव क्या है पूछते हैं ना, तो भाव पवित्र कैसे हो, तो भाव की संशुद्धि, शुद्धि का मतलब भाव की पवित्रता कैसे हो। जैसे कृष्ण भावना नाम रखा है कि मन कृष्ण भावना भावित हो, तो कृष्ण भाव की पवित्रता। इति एतत् तपो मानसम उच्यते, ये सारे मन के तप है, बीच में एक मौनम रह गया, मौन का मतलब यहां लिखा है गंभीरता। ये मन, ये मन की तपस्या है, वाणी की नहीं है। तो इसके अंदर मन को पवित्र कैसे किया जाए, अपने स्वभाव को पवित्र कैसे किया जाए, उसके लिए प्रभुपाद जी यहां लिखे हैं कि हमारे पास बहुत शास्त्र हैं, उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, पुराण है, महाभारत है, रामायण है आदि है, इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो मन के लिए ये अच्छा एंगेजमेंट है, नहीं तो मन खाली होगा तो कुछ ना कुछ उधम बचाता रहेगा, तो इसको इन कामों में लगाना चाहिए कि मन को भोग की तरफ भागता है वहां से हटा के भगवत कथाओं में लगाना चाहिए, तो वो उसमें तृप्त हो जाए, तो उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा। तो विशेष रूप से प्रभुपाद के भावार्थ का मेन उद्देश्य यही है। और मन से दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, दूसरे के भले का सोचना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, मन की तपस्या, तपस्या सबसे मुश्किल है। अब इसके बाद श्रद्धा, तप, तीन प्रकार का तप है। अब आइए तीन प्रकार के तप को पढ़ते हैं। श्रद्धया पर्यातप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्वगुण का तप कौन सा है? अफलाकांक्षी भी, उस तपस्या के पीछे कोई इच्छा नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? श्रद्धया पर्या, परा श्रद्धा, दिव्य श्रद्धा के साथ तप किया जाता है, एकादशी रखनी है। श्रद्धा से रात को संकल्प किया कल सुबह एकादशी रखूंगा, अब श्रद्धा भी है, पर्या श्रद्धा क्यों रखेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तो दिव्य श्रद्धा हो गई। श्रद्धया पर्या, पर्या दिव्य श्रद्धा के साथ तप करे, तीन प्रकार की श्रद्धा है, ये शब्द हो गया। लेकिन सतोगुण की तप कौन सा है? जिसमें दिव्य श्रद्धा हो तप करने की और फल की इच्छा न हो। अब दूसरा तप रजोगुण का कौन सा है? सत्कार मान पूजा अर्थम तपो दम्भे न चैवयत् क्रियते तद इह प्रोक्तम् राजसं चलम ध्रुव अध्रुवम्। सत्कार मान पूजा अर्थम, क्यों तप कर रहा है? कि लोग हमारा सत्कार करें, हमारी पूजा करें, हमको मान दें। बहुत से ऐसे महात्मा के लिए शिष्य के बोलते हैं, महाराज फलहारी है, फलहारी 10 साल से फल के अलावा कुछ नहीं खाया, दर्शन मुश्किल मिलेगा। अरे भाई फल खाए महाराज की मर्जी है, कुछ भी खाएगा इसकी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? महाराज खड़े सूर्य एक पांव पे खड़े थे, तपस्या किए 11 साल, कभी बाहर नहीं निकले गुफा से। नहीं, हमारे को महाराज का दर्शन करना नहीं मिलेगा। क्यों भाई ऐसे कहने की जरूरत क्या है? भाई साधन महाराज के चरणों को नहीं छूना है, ये जो है ये क्यों है? सत्कार है, मान है, पूजा का अर्थ है। और दम्भेना, दम्भेना का कुछ लोग हमने देखे हैं कहते हैं हम 7 दिन यहाँ खड़े रहेंगे, दिन में तो खड़े रहते हैं रात को सो जाते हैं। तो किसी ने देखा रात को ट्रेन से आते सोए हुए क्यों, बोला आखिर 7 दिन के बाद तुम 5-10 रुपये मेरे को दोगे ना मेरी कमाई के, तो मत देना मेरे को सोने दो, सुबह उठ जाऊंगा। उसने बोला ऐसे सीधा, तो दम्भे ना, बोले जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो है वो नहीं दिखते हैं, कुछ और दिखाते हैं, होते कुछ और हैं। ऐसे लोगों को, और इनका तप कैसा होता है, चलम अधुर्वम, वो सदा रहने वाला नहीं है। अधुर्वम का मतलब वो थोड़े समय रहने वाला है। अब प्रभुपाद ने इसका अर्थ क्या लिखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो तमोगुण का तप बहुत करते हैं, काय के लिए, दूसरे लोगों को अपना सेवक बनाने के लिए, मेरी सेवा करो, मेरे चरण दो और मेरे चरणों के ऊपर तो कुछ दक्षिणा रखो। उनकी तपस्या का उद्देश्य है लोगों से पूजा कराना और धन धन पैसा इकट्ठा करना। ऐसी तपस्या रजोगुण की तपस्या कही जाती है। इसके फल थोड़े समय के लिए रहते हैं, ज्यादा समय नहीं रहेंगे। तो ये ऐसे लोग बहुत तपस्या करते हैं और कठोर तपस्या दिखाते हैं। ये तो शिष्य, ये अब कील के ऊपर सोने वाला महात्मा, आके देखना इसको, और कील के ऊपर सोएगा फिर आपको उसके ऊपर पैसा फेंकना है उधर, बस यही उद्देश्य है। एक आदमी बहुत बड़ी तपस्या महाराज ने, ये पानी के ऊपर चलता है, जैसे आदमी जमीन पे चलते ऐसे चलता है, तो कितने साल लगे, बोला 25 साल लगे। बोला 25 पैसे का काम 25 साल में करके आया, 25 पैसे में नाव में दूसरी तरफ जा सकते हैं ना, 25 साल क्यों खराब किए इसके लिए। तो ये ऐसे तप जो है उसका कोई उद्देश्य नहीं। अब तमोगुण के तप को देख लीजिए, मूढ़ा ग्रहणात्मनो यत् पीड़िया क्रियते तपः परस्य उत्साधना अर्थम वा तत्तामसं उदाहृतम्। तमोगुण का तप कैसा है, मूर्ख, मूढ़, वो मूर्ख है, करेगा क्या, अपने शरीर को पीड़ा देगा। जैसे अभी बोला कीले के ऊपर सोएगा, उल्टा लटकेगा, शरीर को पीड़ा देगा, और काय के लिए पीड़ा देगा, परस्त दूसरे लोगों को तकलीफ देने के लिए, परस्य उतना दूसरे लोगों को पीड़ा देने के लिए, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसा तप तमोगुण का तप होता है। प्रभुपाद ने कहा हिरण्यकश्यपु जैसे लोग तप करते हैं, हड्डियां केवल रह गई, मांस सारा समाप्त हो गया, ऐसा तप किया, घोर तप किया, क्यों, दूसरों को तकलीफ देने के लिए, कि कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई गाय नहीं रहेगी, कोई पूजा नहीं रहेगी, इसी काम के लिए तप किया ना, शरीर अपने को भी कष्ट दिया, दूसरों को भी कष्ट दिया, और फिर मांगा क्या कि मैं अमर हो जाऊं, जो हो नहीं सकता है। ऐसी तपस्या जिससे ऐसी चीज मांगी जाए जो हो नहीं सकती है, वो तमोगुण का तप से तप है। प्रभुपाद जी इसके भावार्थ में लिखा है। अब दान का 3 प्रकार है, दातव्यमिति यद दानम् दीयते अन उपकारेण देशे काले च पात्रे च तददानम् सात्विकम् स्मृतम्। जो सतोगुण का दान है वो अनुपकारेण दिया जाता है, तो उसके बदले में कुछ मांगने की इच्छा नहीं। क्यों दान देते हैं, दान समझ के दान देते हैं, अनुपकारेण वापस उसका कुछ मुझे मिलेगा ये इच्छा नहीं। देश काल पात्र को देख के दान दिया जाता है। देश का मतलब कौन सी जगह दान दिया जाए, जैसे गंगा के किनारे में दान देना, हरिद्वार में दान देना, वृंदावन में दान देना, ये देश हो गया। काल एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, ग्रहण के दिन दान देना। एक बार हम गए थे ना ग्रहण को, लोग दान दे रहे थे ना सारे, तो ग्रहण के दिन दान देने का लाभ ज्यादा है, तो वो तिथि देखते हैं, पूर्णिमा के दिन देना है। देश काल पात्र किसको देना है, जो ब्राह्मण आदि जो समाज के अंदर आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, ऐसी संस्थाएं जो भगवान की पुस्तक छाप रहे हैं, दूसरों को पहुंचा रही है, प्रसाद वितरण कर रही है, ऐसों को दान देना, तो ये सतोगुण का दान है। तो सतोगुण के दान में क्या क्या देखना है? देश, काल, पात्र, तीन चीजें देखना है और बदले में कुछ नहीं मांगना है। तो इसके अंदर प्रभुपाद ने विशेष रूप से लिखा है कि जो हमको दान देना चाहिए उसमें आध्यात्मिकता का ध्यान जरूर देना देखना चाहिए। और फिर ये लिखा है कि किसी तीर्थ स्थान के ऊपर किसी ग्रहण के दिन दान देना, महीने में अंत पूर्णिमा आदि पे देना, किसी ब्राह्मण को देना, वैष्णव को देना, किसी मंदिर में देना, वापस कुछ लेने की इच्छा नहीं हो, इसको सतोगुण का दान। कभी कभी गरीब आदमी को दान देते हैं वो अच्छा हो सकता है लेकिन ये मालूम नहीं कि गरीब आदमी उस दान से क्या करेगा, इसलिए वो सतोगुण का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं इसलिए कहते हैं कभी हम किसी को पैसा गरीब समझ के देते हैं लेकिन वो जाके उसी पैसे से शराब लेके पी लेता है, तो क्या वो सतोगुण का दान नहीं दिखता है? तो इसलिए उसमें डाउटफुल लिखा है प्रभुपाद जी। अब रजोगुण का दान देखिए, यत्तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दियते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। पहली बार दान देता है कि उसके वापसी में कुछ चाहिए, प्रत्युपकारार्थम, वापस में कुछ उसका फल चाहिए, दान दे रहा हूं तो कुछ मुझे मिलना चाहिए। जैसे क्या मिलना चाहिए कोई कहे तो, दान दे रहा हूं तो मेरा नाम तो कम से कम लिखो, हाँ कम से कम पत्थर के ऊपर मेरा नाम तो लिखना पड़ेगा ना। मैं आपको कभी बताया, एक पंखा था किसी ने मंदिर में दिया था, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था। मई के अंदर पंखा चल रहा था, लोग हवा खा रहे थे, बटन बंद कर दिया, पर भाई हवा खाने तो पहले देखो बोला नाम किसका है, पढ़ो फिर हवा खाओ। पृथ्वी का उपकार मतलब कम से कम देखो तो सही ना। तो पहला ये है, और दूसरा क्या है? परिक्लिष्टम। दूसरा परिक्लिष्टम का अर्थ क्या है? अरे भैया क्या राधा चरण जी आए, कह दिया दे दे 1000 रुपया महाराज को, हम देने वाले नहीं थे,
देना पड़ेगा,
गुरु जी का आदेश है, क्या करें। मतलब अंदर में खाम खा का इतना दिया, ये आदमी नहीं आता तो मैं कभी नहीं देता। और लोग भी होशियार हो गए, मांगने वाला 2-4 बड़े आदमी साथ लाता है, इसलिए दान रजोगुण का हो जाता है। तो परिकृष्टम जो है उसका अर्थ है पीड़ा होती है दान देने के बाद, देने के बाद दे देता है फिर 2-3 दिन सोचता रहता है, अरे वो नहीं आता तो इतना नहीं देता। इसलिए आपको सरल रास्ता बता देते हैं दान देने का, सत्वगुण का दान, अपनी कमाई से अपने मन से जो चाहिए एक हिस्सा निकाल के रख दिया करोगे, ये दान का हिस्सा है। अब आपके जेब से निकल गया पहले दान के नाम में, जो भी पड़ा फिर जैसा आदमी आए वैसा दे दो उसको, तो आपके जेब से नहीं जाएगा, आपने पहले ही निकाल के रखा है ना। एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने मुझे ये सिद्धांत बताया कि मैंने एक ट्रस्ट बना रखी है अपने बच्चों की, एक ट्रस्ट, मानो मैं हमारी कमाई का चाहे 0.5% 1% जो मन में आए वो निकाल के रख दिया है। अब साल में जो 25,000-50,000 रुपये उसमें पड़े होते हैं, अब जैसा आदमी आता है वैसा दे देते हैं। अब हमारे जेब के ऊपर तो भार पड़ता नहीं, दुख होता ही नहीं, वो पहले ही दे दिया है ना। तो ऐसे हर गृहस्थी को अपने हिसाब से कुछ दान का हिस्सा निकाल के रख। तो उसमें क्या है फिर, परिक्लिष्टम नहीं होगा, रजोगुण का दान नहीं होगा, तो पहले से निकला हुआ है, किसी न किसी को तो देना ही है, तो ये परिक्लिष्टम है। तो रजोगुण के दान में प्रभुपाद ने विशेष रूप से लिखा है, पहले तो ये लिखा है इतना मैंने दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए, उसने कहा था, गुरु जी ने कहा था इसलिए दे दिया, यही बात की है। और नीचे लिखा है एक बात, प्रभुपाद ने शायद देखा कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हुई है जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं लेकिन उनका दान सही जगह पे नहीं जाता है, अपने नाम के कारण होता है, तो रजोगुण में प्रायः वो दान जाता है, उसका एक वर्णन है। अब तमोगुण का दान देखिए, आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम। आदेश देश शराब खाने के बाहर खड़ा हुआ एक आदमी कह रहा है प्राण निकल जाएंगे, कुछ दान दो, एक बोतल लेनी है। तो देश कौन सा हो गया? शराब खाना, वेशा घर शराब खाना। ऐसी जगह पे खड़ा हुआ आदमी, बड़े एक मेहमान घर में आए हैं, मांस के दुकान से पैसे का लेना है 5 किलो, पैसा इतना नहीं है, कुछ दान दे दो। ये आदेश हो गया। काल क्या हो गया? आदेश काले, समय। कुछ समय ऐसा होता है कि दान देने का, कोई ऐसे गलत समय पे दान दे। इसका कोई उदाहरण? तमोगुण वालों का समय क्या होता है? ढूंढ, में अभी ऐसे आ नहीं रहा है सीधा। हाँ, शराब पीने के बाद ना, ये भी बात। आप एक एक हम सिंध में रहते थे, उसका काम था शराब के गुत्ते थे, भाटिया जी था। उसने दुकान के बाहर बड़ा एक दान पात्र लगा दिया था और महीने के बाद खुलता था, बहुत पैसे निकलते थे। हमने बोला इतना पोर दान करता था, अरे भाई दान आया कहाँ से? बोला शराबी पीने के बाद पता नहीं लगता, जो होता है सब उसमें डाल जाता है। जो होता है उधर ही डाल के जाता है। और उससे वो बहुत बड़ा दान करता था, और भाटिया जी उससे दान किया करता था। तो काल का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा काल है कि देना चाहिए। कुछ काल होते हैं जिसमें दान अस्वीकृत होता है, वेदों में कुछ लिखा होगा, मेरे को ये अभी जबान पे नहीं आता है। अब पात्र, पात्र कौन सा है? ब्राह्मण नहीं है, साधु नहीं है, संत नहीं है, कोई अच्छा काम करने वाला नहीं है, किसी पात्र को दे दिए। आपने देखा एक और दान का नमूना अपने घरों में आजकल चला है, दान तो करना है, अपने जमाई को दे देते हैं ना। घूर के घूम फिर के अपने घर में दान, अपने घर में देना है बड़ा वाला, ये बड़ा जो दान देना है अपने घर में देना है, बाकी गेहूं आदि 2-4 किलो ब्राह्मण को दे के आओ, बाकी सोना जो दान में करना है वो अपने जमाई को दे देना है, अपने भांजे को दे देते हैं ना, भांजा भी तो हो गया ना अपना। देखा ये एक नया दान का नमूना अपने घरों में निकला हुआ है। हा? ये बच्ची छोटी है इसको दे देते हैं, ये हमारी भांजे को, ये भतीजे को, ये दान का एक नया नमूना निकला है। तो ये पात्र जो है उसको जरूरत नहीं दान की, लेकिन आपको घर के अंदर रखना है इसलिए दान को ऐसे देते हैं। तो ये सब दान तमोगुण में आ जाता है। विशेष रूप से इसमें मेरे ख्याल में भावार्थ में कुछ है नहीं। अब ये अभी तक 3 गुणों की बात है। अब दान करना है, तप करना है, यज्ञ करना है, कुछ भी करना है, उसमें एक शब्द आप कह देने से वो सारा पवित्र हो जाएगा। अब ये भगवान सरल एक साधन बता रहे हैं। ओम तत्सद इति निर्देशो, ब्रह्मास्त्री विधा स्मृतः, ब्रह्मास्तेन वेदश्च, ब्रह्मास्तेन वेदाश्च, यज्ञाश्च विहिताः पुरा। पुरा का मतलब पुराने जमाने से, पुरातन काल से ब्राह्मण जब यज्ञ दान और तप करते हैं तो ये 3 शब्द ओम तत् सत, जिसका ब्राह्मण मतलब वेद में निर्देश है, उसका उच्चारण करते। पुराने जमाने से, पुरन काल से ब्राह्मण लोग जब यज्ञ तप या दान करते हैं तो ये 3 शब्द ओम तत् सत, जो ब्राह्मण पहला जो ब्राह्मण है ना ये वेद के लिए है, और दूसरा ब्राह्मण है ब्राह्मण के लिए। और ब्राह्मण वो भगवान, क्यों भगवान, भगवान के निर्देश करता है। वेद में भगवान के लिए 3 शब्द है ओम तत् सत। प्रभुपाद जी 1950 के समय में जब अपने नाम लिखने से ऊपर लिखते थे ओम तत् सत, भक्ति वेदांत स्वामी लिखते थे। अभी भी कुछ किताबों को नीचे प्रभुपाद ने ओम तत् सत करके समाप्त किया हुआ है। तो ओम तत् सत का मतलब भगवत अर्पण। इसको साधारण जीवन में अपने घर में यूज करना है। कोई दान देता है अथवा दान लेता है, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, जबान से कहने की आदत सिर्फ डाल दे तो ये ओम तत् सत हो गया। अब ये किसी भी कार्य में इन 3 शब्दों का उच्चारण करने से भगवान को संबोधित हो जाता है और वो दान 3 गुणों से ऊपर चला जाता है। वो दान वो तप वो यज्ञ, उसमें ये तीन शब्दों को उच्चारण करना चाहिए, ओम तत् सत। ओम भगवान के लिए है, तत् अपने आप को बंधन से मुक्त करने के लिए है, और सद का मतलब है ये सेवा, सत सेवा में लग गई, ये भगवान की सेवा में लग गया। ये तीन शब्द है ऐसे। अब इसमें आप देखिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अभी तक जो बात की है, फर्स्ट क्लास सतोगुण, सेकंड क्लास रजोगुण, थर्ड क्लास तमोगुण, किसी क्लास का चिंता मत करो, केवल ये शब्द कह देने से वो चीज पवित्र हो जाती है भगवान का नाम लेने से। पहले भावार्थ का हिस्सा ये है, हर भगवान के नाम के साथ हमेशा ओम लगा हुआ मिलता है वेदों में, तो ओम का उच्चारण करके ये कार्य करने चाहिए। फिर ओम तत्सद इन तीन शब्दों के लिए वेदों में से इन तीन शब्दों का आप देखें, परिच्छेद में दूसरे में ओम तद विष्णु, भगवान विष्णु की तरफ ओम इशारा करता है, और ओम इति एतद् ब्रह्मणो निदिष्टम नाम, निदिष्टम नाम, ये ऋग्वेद में ये पहला लक्ष्य। दूसरा है तत्त्वमसि, ये छांदोग्य उपनिषद से है, और ये दूसरा हमारा लक्ष्य। तीसरा है सदैव सोमय, छांदोग्य उपनिषद से है, इसका तीसरा ये हमारा लक्ष्य है। तो ये तीनों को जब साथ करते हैं, तो ब्रह्मा ने जब पहली बार यज्ञ किया था तो उसने ये शब्द उच्चारण किए थे। अब दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत और तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो भगवान के लिए यज्ञ करने के लिए सामग्री सारी भगवान से ली, भगवान को अर्पण की, लेकिन शब्द सिर्फ कहा ओम तत्सत, तो वो भगवान की पूजा हो गई। तो ब्रह्मा ने पहले ये ऐसे किया, उस पुराने जमाने से अभी भी ब्राह्मण जब ये कार्य करते हैं तो ओम तत्सत का उच्चारण करते। तो ये तीन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, और जब ये ऐसे करता है तो समझ लो कि कृष्ण भावना में काम कर रहा है, और ये हमको वापस भगवत धाम ले जाने में सहयोगी होगा। अब 24वें श्लोक में ओम का है, 25वें में तत् का है, और 26वें में सद का है, 26 और 27 में, और 28 में जो नहीं करता है, नेगेटिव नहीं करता है, उसका क्या परिणाम है वो लिखा है। तो आइए पहले तदोमिति उदाहृत्या यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादीनाम। ब्रह्मवादी नाम का मतलब जो आध्यात्मिकवादी है, जो आध्यात्मिकवादी है इसलिए जब भी दान तप यज्ञ करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं, जिसका मतलब जो धर्मात्मा लोग हैं, आध्यात्मिकवादी लोग हैं, ब्राह्मण आदि हैं, अथवा जो भी आप लोग में है, जब ओम का उच्चारण करते कोई भी यज्ञ दान तप करते हैं तो वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। प्रभुपाद ने सिर्फ कहा ओम तद विष्णु परमम पदम, ओम भगवान विष्णु को की तरफ निर्देश करता है। अब तद, तदिति अनभिसंधाया फलम यज्ञः तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियते मोक्षकांक्षिभिः। तो जब भी दान तप यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें फल की इच्छा न करके मोक्ष की इच्छा करने वाले तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। तत् का मतलब भगवान को प्राप्त करने का, तत् त्वम असि, हम तुमको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हो गया संसार से मुक्त होना। तो इन सब कार्य में फल की इच्छा न करके भगवत प्राप्ति की इच्छा करना, मुक्ति की इच्छा करना करने वाले इन शब्दों के में अपने उस कार्य में तत् शब्द का उच्चारण करते हैं, कि जो भगवत धाम जाना चाहते हैं वो तत् शब्द का उच्चारण ओम के साथ करते हैं। अब सद्भावे साधु भावे च सदिति एतत् परयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्द पात युज्यते यज्ञे तपसिदाने च स्थिति सदति उच्चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदति एवाभिधीयते। अब इन इसमें एक शब्द एक श्लोक आपने कहीं चौथे अध्याय में छाप पड़ा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम। जब भगवान के लिए कोई चीज करते हैं तो वो चीज ब्रह्म हो जाती है, वो पदार्थ ब्रह्म हो जाता है, करने वाला ब्रह्म हो जाता है। यह है कि जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो सब सत हो जाता है, वो सब सत हो जाता है। तो ओम तत् सत जो शब्द है ये सत शब्द की परिभाषा है। तो सद्भावे, सद्भावे का मतलब भगवान के लिए भावना, भगवान की भावना करके। और साधु भावे का मतलब साधु के भाव से, भक्त के भाव से, भगवान के लिए भक्त के भाव से जब कोई कार्य किया जाता है, कोई पूजा कार्य की जाती है, किसके कहने के ऊपर? प्रशस्ते, प्रशस्ते का मतलब शास्त्रों के निर्देश के अंतर्गत। भगवान के लिए भक्तों के द्वारा जब सेवा शास्त्र के अनुगत की जाती है तो उसको शब्द शब्द से द्वारा उच्चारण किया जाता है। यज्ञ तप दान में जब सत्य का उच्चारण करते हैं तो वो सारा कर्म और उसका फल ये सब सत्य हो जाता है, वो सब चीजें सत्य हो जाएंगी। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो भक्ति का लक्ष्य क्या है? सद, सद का मतलब भगवान, परम सत्य। ये सत्य वही शब्द है, सत्यम परम धीमहि, ये वही सत्य शब्द है। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण, एक ही अर्थ है, ओम तत्सत कहो, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु कहो।
जैसे हम वैष्णव समाज में अगर किसी को दान दे
तो भी भगवान का नाम लेना चाहिए, वो भगवान के प्रतिनिधि है, लेकिन भगवान का नाम लेके देना चाहिए। ऐसा ये शास्त्र यहाँ कह रहा है कि ओम तत्सत यदि कह दो, हर एक श्री कृष्ण अर्पण वस्तु कह दो, ये कहना चाहिए थोड़ा, तो फिर वो शुद्ध हो जाता है। प्रशस्त कर्मणि का अर्थ पौपाधि भारत लगते हैं, प्रशस्त कर्मणि का अर्थ है ये हमारे निर्धारित कर्म है, शास्त्र के अंतर्गत है, और ये पवित्र करने का रास्ता है। किसको? हमारे जीव आत्मा को बंधन से मुक्त करने का रास्ता है। और फिर ओम तत्सद में सद्भावे और साधु भावे, इन दो शब्दों को प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये सद्भावे साधु भावे आप ठीक तरह समझ लेंगे, क्योंकि एक ये प्रश्न आपके एग्जाम जैसा प्रश्न है कि सद्भावे किसको कहते हैं, साधु भावे किसको कहते हैं। हाँ, कृष्ण भावना में काम करने को सत्व कहते हैं, और जो ऐसे काम करता है उसको साधु कहते हैं। अब इस सत शब्द की परिभाषा के लिए प्रभुपाद जी ने तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये शब्द बताया, सताम प्रसंगान मम वीर्य, एक श्लोक है तीसरे स्कंद का, कि साधु के संग में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सताम, सताम ये साधु के लिए है। कि जब किसी को दीक्षा दी जाती है अथवा जनेऊ दिया जाता है तो ओम तत्सत का उच्चारण करता है, यज्ञ में ओम तत्सत का उच्चारण होता है। तदर्थियम का मतलब है तदर्थियम, भगवान के संबंध, कोई चीज भगवान के संबंध में दी जाए तो तदर्थियम कहते हैं, तदीय वस्तु जिसको कहते हैं, तदर्थियम भगवत संबंधी वस्तु। जैसे भगवान के लिए भोग बनाते हैं घर में अथवा मंदिर में सेवा करते हैं, ये सारे काम भगवान के प्रचार का काम है, ये सब सद्भाव हो जाते, ये सब काम कैसे हो जाते हैं, ये सत हो जाते हैं। इसमें ओम तत्सत का उच्चारण करने से ये सारे काम अपने आप में शुद्ध हो जाते हैं। अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का, अश्रद्धया हुतम दतम तपस्तप्तम कृतम च यत् असादिति उच्यते पारथ न च तत् प्रेतनोय न च तत् प्रेत्यनोय। आखिरी लाइन में है न चतत प्रेत्य, प्रेत्य मतलब मरने के बाद, यह मतलब इस दुनिया में, न इस दुनिया में न मरने के बाद फल मिलता है किसका, जिसमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहित दान किया है, यज्ञ किया है, तप किया है, तो वो सब असद है, क्योंकि अध्याय का नाम श्रद्धा है, तो श्रद्धा ही नहीं है, तो ये सारे काम अगर बगैर श्रद्धा के किए जाए तो ये असत है, और ये न इस दुनिया में सुख देने वाले हैं और न दूसरे जगत में मरने के बाद। श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा युक्त, और इसके भावार्थ में हर एक कार्य जो भी किया जाए कृष्ण भावना में किया जाए, नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं है, सही निर्देश नहीं है गुरुजनों का, तो उसका कोई लाभ नहीं है। वेदों का उद्देश्य, सब वेदों का, सब शास्त्रों का है भगवत भगवान को जाना, कृष्ण को जानना। अगर उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं तो सारे काम, जितने भी और कुछ हम काम करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु के निर्देश में सारे काम करने चाहिए। अब आखिरी परिच्छेद में आप देख लीजिएगा, प्रभुपाद जी एक उद्देश्य देकर, सत्रहवें अध्याय का उद्देश्य क्या है ये बताते हैं। यक्ष, यक्ष कौन है? कुबेर। आपने कुबेर की पूजा देखी है कहीं? बद्रीनाथ में नर नारायण के साथ कुबेर बैठा हुआ है, और वहां जो रावल होता है पुजारी, कुछ लोग हैं जिनको मालूम है, वो चांदी के सोने के सिक्के ले जाते हैं, वो कुबेर को रख के फिर वहां से वापस लाते हैं। तो कुबेर धन का देवता है, तो धन बढ़ेगा, इसलिए यक्ष पूजा है, रजोगुण की पूजा है। वहां ये है। अब देखिए आखिरी परिच्छेद को पढ़िए, क्या लिखा है। ये पूरा पढ़ लीजिए, ये मुख्य है, सातवें अध्याय का और सत्रहवें अध्याय का ये सार है। ये सारी जो भी पूजा हम बाहर कर रहे हैं, इस पूजा का उद्देश्य इस अध्याय का नहीं है। इस अध्याय का उद्देश्य है कि गुरु के शरण में रहकर शिक्षा ग्रहण करे और उससे अपनी श्रद्धा बढ़ाए। आदव श्रद्धा अत साधु संग तथा भजन क्रिया, ये पूरी लाइन ये रूप गोस्वामी के श्लोक की भावार्थ है प्रभुपाद जी की। ये नीचे अब देखेंगे इस श्लोक, ये जो है भावार्थ इसे लिखा, और इसमें लिखा क्या है, जैसे जब हमारा भाव श्रद्धा बढ़ेगी तो फिर भगवत प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये जो भावार्थ है ये किसके ऊपर बेस है? रूपा गोस्वामी का ये श्लोक कौन सा, आदाओ श्रद्धा अथ साधु संग, और भगवत गीता के किसी श्लोक के भावार्थ में ये लिखा हुआ है, देख लेना, किसी श्लोक के भावार्थ में ये श्लोक मिलेगा, ये इसका उद्देश्य है। तो सत्रह अध्याय का उद्देश्य क्या है, आखिरी लाइन क्या लिखा है?
यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है, जब काल कर्म श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है,
सत्रह अध्याय का यह संदेश है कि हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर केंद्रित हो। अभी हमारी श्रद्धा और जगहों पे केंद्रित है, तो सत्रवा अध्याय अंतिम तीन श्लोक कहते हैं ओम तत् सत्य दी भगवान है, इसके ऊपर श्रद्धा केंद्रित होगी तो सब सफलता मिलेगी। यहाँ सत्रह अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो टाइम हो गया है, प्रसाद खाओ। हाँ जी बोलिए, प्रश्न क्या है?
कई बार से अनिच्छा से कई लोग आते हैं, वो भी हम बैठते हैं मार्केट में, अनिच्छा से मतलब और इच्छा नहीं है उसको देने की, पेपर देना पड़ता है, हम बिल्कुल अनिच्छा से हमारी इच्छा नहीं है, वो उस कैटेगरी 99% को कुछ माफ नहीं करते हैं, जो 1% बचता जो लोगों के प्रेशर में और ना चाहते हुए देते हैं, वो किस कैटेगरी में उसको कैसे लगा चाहिए, देना पड़ता है
ओम तत्सत करके दे देना चाहिए आप ओम तत्सत, ये इसलिए आखिर में बोला प्रभुपाद ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास कुछ भी ओम तत्सत कहने से वो पवित्र हो जाता है, ऐसे करके देना चाहिए। और विशेष गाड़ियों में जाते हैं लोग मांगने आते हैं उसके लिए प्रसाद कुछ रख देना चाहिए पैसे के बजाय, नहीं पैसा के बजाय ऐसे उसमें कुछ लोग हैं जो रख देते हैं, अब तो लोग इतने हमको जानते हैं हरे कृष्ण बोलेंगे मेरा प्रसाद दो और पैसा नहीं मांगेंगे, और प्रसाद क्यों, उन बच्चों को ये पैसा तो माँ बाप ले जाते हैं, खाने को कुछ मिलता नहीं है, आप उसको कुछ दोगे तो बड़ा खुश हो जाएगा, उसके पेट में सीधा आपके सामने जाएगा देखेंगे आप, तो उससे कम से कम उसका उधर पूर्ति तो होगी, पैसे तो इसके वो लोगों ने इसको बाहर खड़ा कर दिया, वो तो बाहर जाके थप्पड़ लेके मार के सब पैसा इनसे ले लेते हैं, इसे पैसा ना देकर खाने की चीज़ इनको देना उचित। कुछ लोग मैंने देखा है वो पार्ले बिस्कुट के पुड़े रख देते हैं अंदर, कोई बच्चे होते हैं तो वो चार चार बिस्कुट वाला दे देते हैं, कुछ प्रसाद रख देते हैं केला वेला कुछ कोई आए तो उसके देना, तो ये ठीक है, बाकी ऐसा कुछ देना पड़ता है तो हम तसद्दुक के अब जितना आपको दान निकाला उसका 50% तो आपको रखना चाहिए अपने गुरु अथवा उसकी सेवा में, बाकी 50% में से आपको दूसरे समाज के अंदर भी कहीं जहाँ उठना बैठना है तो देने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा भी कई निर्देश है। हरे कृष्णा।